समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर। कार्यक्रम आज सवेरे में सुबह के 7:30 बज चुके हैं और 17 मई की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है अनीता आनंद। नमस्कार अनीता।
नमस्कार निखिल, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू आकाशवाणी गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग यू आवर Forever exciting Delhi News Magazine program Aaj Savere, wherein over the next half an hour we shall bring you the latest in national, international news, metro city updates, as well as some historical information related to this day, that is the 17th of May. So let's begin with the headlines first. Prime Minister Narendra Modi stated that the Election Commission is a marvel to the rest of the world. In an interview to a media house in Delhi yesterday, Mr. Modi stressed that it is his government's responsibility to showcase its exemplary work to the world. He added that in a democracy, elections must not be compartmentalized as merely losing or winning. He said elections provide an opportunity to convey a party's message directly to the people without any dilution or diversion. Mr. Modi also hit out at Congress, claiming that for the party, democracy means staying in power. He alleged that members of the Congress party are burdened by the legacy of the Gandhi family.
लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के लिए प्रचार तेज हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी आज बाराबंकी, फतेहपुर और हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्रों में रैलियों को संबोधित करेंगे। इस बीच दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए कुल 162 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं और दिल्ली के सांसद उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत कल जनता से बातचीत की। पश्चिमी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा ने कल हरिनगर, नजफगढ़, द्वारका, विकासपुरी और मटियाला में जनसभाओं को संबोधित किया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बेरोजगारी और अग्निवीर का मुद्दा उठाया।
Today is the last day for filing of nominations for the 5th phase of Lok Sabha polls. Scrutiny of nominations will be held tomorrow, while Monday is the last date for withdrawal of candidature. Meanwhile, polling for the phase 3 of Lok Sabha elections in 93 seats in 10 states and 1 union territory will be held on 7th of this month.
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली में 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए घर पर मतदान की सुविधा शुरू की है। यह सुविधा 24 मई तक रहेगी। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण के लिए मतदान होना है।
प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉ कीथ क्रिस्टोफर रावले इज ऑन अ विजिट टू मुंबई टू प्रमोट बायलैटरल रिलेशंस विद इंडिया एंड टू डिस्कस द इश्यू ऑफ ओपनिंग अ क्रिकेट एकेडमी इन त्रिनिदाद। Dr. Keith Christopher Rowley and his wife Sharon Rowley were accorded a ceremonial reception by Maharashtra Governor Ramesh Bais and Srimati Rambhai Bais at Raj Bhavan, Mumbai yesterday. Speaking on the occasion, Dr. Keith Rowley said India's independence paved the way for the independence of Trinidad and Tobago.
संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET 2024 बुधवार को देशभर के 2157 परीक्षा केंद्रों पर शुरू हुई, जिसमें देश के बाहर के 26 शहर भी शामिल हैं। करीब 1578 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कल आयोजित की गई। कुल मिलाकर उपस्थिति में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ परीक्षा का 72% हिस्सा दो दिन में पूरा हो गया है। भारतीय तटरक्षक बल ने भारतीय जल क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने वाली 5 श्रीलंकाई नौकाओं को हिरासत में लिया है। पाक जल डमरू मध्य के पास गश्त पर निकले भारतीय तटरक्षक बल के जहाज रानी दुर्गावती ने तमिलनाडु तट पर पॉइंट कैलिमेरे से लगभग 15 मील दूर संदिग्ध नौकाओं को देखा। श्रीलंका के 14 नागरिकों वाली 5 नौकाओं को तटरक्षक जहाज ने MZI अधिनियम 1976 के उल्लंघन के लिए पकड़ा है। नौकाओं और चालक दल को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए नागापट्टिनम में तटीय सुरक्षा समूह को सौंप दिया गया।
Talking about the weather, the Indian Meteorological Department IMD has forecast heat wave conditions over northwest India and Bihar for the next 4 days. Severe heat wave conditions are very likely to prevail in some parts of West Rajasthan, Punjab, Haryana and Delhi till 20th of May. East and Central India are also likely to witness heat wave conditions from 18th of this month.
इस बीच पंजाब में बीते कुछ दिन से भीषण गर्मी पड़ रही है. मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आने वाले दिनों में इसके और भी बढ़ने की संभावना है. राज्य सरकार ने स्कूलों में 1 जून से गर्मी के कारण अवकाश की घोषणा की है.
ऑन टू स्पोर्ट्स नाउ. इन विमेन्स बॉक्सिंग रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन निकहत जरीन रजिस्टर्ड एन इम्प्रेसिव 5-0 विन ओवर कजाकिस्तान तोमिरिस मिर्ज़ाकुल टू एंटर द विमेन्स 52 kg फाइनल एट द एलोर्डा कप 2024 इन अस्ताना, Kazakhstan today. Besides Nikhat Meenakshi in 48 kg category, Anamika in 50 kg and Manisha in 60 kg category have also made their ways into the finals. Meenakshi and Manisha put up similar dominating displays in their semi-finals to grab the final unanimous victories. Meenakshi bagged her win against Kazakh boxers Gulnaz Buribayeva, while Manisha defeated Tungstar Asim. Anamika, on the other hand, was adjudged victorious after her opponent, Kazakhstan's Gulnar Turabey, was disqualified for excessive holding after 3 warnings. The finals will be played on Saturday this week.
आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया है. इससे पहले गुजरात टाइटंस के खिलाफ उनका मैच लगातार बारिश के कारण टॉस के बिना रद्द हो गया. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच प्ले ऑफ में चौथे और आखिरी स्थान के लिए लड़ाई अब भी जारी है. प्रतियोगिता में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा.
इंडियन नंबर 1 विमेन्स पैडलर मनिका बत्रा एंड वेटरन शरद कमल विल स्पीयरहेड अ 6-member इंडियन टेबल टेनिस टीम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स 2024. द स्क्वाड वॉज अनाउंस्ड बाय द टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया टुडे. ऑल 6 players ऑफ द इंडियन ओलंपिक टेबल टेनिस टीम वॉज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन वर्ल्ड रैंकिंग. शरद कमल इंडियाज टॉप रैंक मेन्स सिंगल्स टेबल टेनिस प्लेयर at world number 40, Manav Thakkar, world number 62, and national champion Harmeet Desai, ranked 63, will form the men's team.
So, ye thi ab tak ki pramukh khabrein. और श्रोताओं, वक्त है प्रमुख महानगरों यानी राजधानी दिल्ली और मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु तथा हैदराबाद से जुड़ी खबरों को अब तक पहुंचाने का. तो अनीता, क्या समाचार है आपके पास?
Well, in Chennai, the inaugural event at the Golden Jubilee celebrations of the Combat Vehicles Research and Development Establishment began yesterday at Avadi near Chennai. The organization has played a significant role in the enhancement of the country's self-reliance in defense cutting-edge technologies for the past 50 years. Dr. Samir V. Kamath, Secretary and Chairman of DRDO, graced the occasion along with top officials of the various defense establishments who took part in the event. Following the celebrations, the CVRDE flagship products were displayed in the exhibition and the features of each delegate. We have another news from Chennai. IIT Madras will host a society for the promotion of Indian classical music and culture amongst youth, 9th Annual International Convention from 20th of this month to 26th of May. The week-long festival of Indian culture, in which more than 1,500 students and volunteers gather from across India and the world. Participants get an outlook of the Indian culture, heritage and ethics as they interact with great artists. In this event, around 150 students, researchers will take part in the event. Nearly 1,300 participants from across India will have the opportunity to learn one art form every day and experience the performance. There are 103 candidates in the free, filing 156 nominations for the 6 seats of Karnataka Legislative Council. The elections to the 3 graduates and 3 teachers' constituencies will be held on 3rd of June. Yesterday was the last day to file the nominations. The last day for withdrawal of candidature is 20th of May. The counting of votes will be held on 6th of June. The Congress candidates are contesting from all 6 seats. However, the BJP is contesting from 5 seats and its alliance party JDS is contesting the election from 2 seats. The BJP is supporting the JDS candidate from South West Tichy constituency. However, both the coalition partners are contesting from South Tichy's constituency. Heavy rain lashed Hyderabad city and its outskirts last evening, bringing much needed relief to people. Secunderabad Khairatabad, Begumpet, Kokatpally, Amarpet and other areas witnessed heavy rainfall, prompting people to take shelter under flyovers and metro rail pillars. Hyderabad experienced a pleasant atmosphere as it registered a dip in day temperature. However, people had to face hardships due to traffic snarls for long distances. In Ukraine, Chief Minister A. Revanth Reddy asked officials to be on high alert. Reviewing the situation at the Secretariat, he instructed officials to avoid any inconvenience to people due to the rains. Sudden downpour also brought much relief to people, but it cast a shadow on the IPL match in Uppal. The ground staff covered the pitch and the field with covers. Traffic movement was also affected because of rains in several busy areas. Senior officials asked the field-level staff to be on roads to attend any emergency situation. The highest rainfall of 93.3 mm was recorded in Khairatabad, while Sekhpet recorded over 87 mm. And now for Metro City News from Delhi, Mumbai and Kolkata. Over to Nikhil.
देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 नई दिल्ली में चल रही है। चार दिन की इस प्रतियोगिता में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के दौरान पारंपरिक हस्तशिल्प से लेकर नई तकनीक के क्षेत्र में वे अपना कौशल दिखा रहे हैं। इस प्रतियोगिता के विजेता सर्वश्रेष्ठ उद्योग प्रशिक्षकों की सहायता से इस वर्ष सितंबर में फ्रांस के लियोन में होने वाली वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता की तैयारी करेंगे। आईआईटी दिल्ली ने कल से हाईस्कूल की छात्राओं के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित स्टेम मेंटरशिप कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से छात्राओं को जीवन में आगे बढ़ने और बेहतर भविष्य बनाने के लिए आईआईटी के पूर्व छात्र सलाह देते हैं। इस मेंटरशिप कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार के स्कूल, निजी विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों के कुल 200 छात्राओं ने अपना पंजीकरण कराया था, जिनमें से 100 छात्राओं को चुना गया है। इस कार्यशाला में विशेषज्ञों के व्याख्यान और व्यावहारिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने पंजाब नेशनल बैंक की दिल्ली स्थित हापुड़ शाखा के हेड कैशियर के खिलाफ अवैध रूप से रुपयों के हस्तांतरण के आरोप में मामला दर्ज किया है। हेड कैशियर पर आरोप है कि उसने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से लगभग 5 करोड़ रुपए अवैध रूप से भोपाल स्थित अलग अलग खातों में हस्तांतरित किए हैं। सीबीआई ने इस संदर्भ में आरोपियों के घर पर तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए। दिल्ली पुलिस ने शराब की अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि इस संबंध में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल किए जाने वाला चार पहिया वाहन भी जब्त किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दिल्ली आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। और अब खबर मुंबई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मुंबई के प्रतिष्ठित शिवाजी पार्क में एक भव्य चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मनसे प्रमुख राज ठाकरे तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। मुंबई में 6 संसदीय क्षेत्र हैं, जहां सोमवार को मतदान होगा। इस बीच मुंबई शहर के 2 निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। जिला चुनाव अधिकारी संजय यादव ने मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य के मतदाताओं से लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में आगे आने का आग्रह किया है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री यादव ने बताया कि शहर में 24,90,238 मतदाता हैं। उन्होंने कहा कि शेड, पेयजल और रैंप जैसी आवश्यक सुविधाओं के साथ 2,520 मतदान केन्द्र स्थापित किए गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 15,000 मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया है और मतदाता पर्चियां वितरित करने का काम चल रहा है। मुंबई पुलिस ने घाटकोपर होर्डिंग ढहने की घटना के मुख्य आरोपी भावेश भिड़े को गिरफ्तार कर लिया है। भावेश ईगो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड का मालिक है, जिसने अवैध रूप से विशाल होर्डिंग लगाई थी, जो सोमवार को अचानक धूल भरी आंधी के दौरान ढह गई और इस घटना में 16 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 75 लोग घायल हो गए। भिड़े को उदयपुर से गिरफ्तार किया गया और उसे आज मुंबई की एक अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। और अब खबर कोलकाता से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन कल कोलकाता में विशिष्ट नागरिक सम्मेलन में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने इस राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुत ही निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बंगाल कभी देश का नेतृत्व किया करता था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के भ्रष्टाचार के बारे में बात की और लोगों से हालात बदलने का आग्रह किया। और अब हम लेते हैं हाल ही मौसम। तो राजधानी दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान आज 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं मुंबई में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। कोलकाता की बात करें तो न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा जबकि अधिकतम तापमान आज 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है और आंशिक रूप से बादल भी छाए रहेंगे। अनीता, अन्य महानगरों यानी चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में आज मौसम कैसा रहने वाला है?
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी sky with possibility of moderate rain or thunderstorm. The minimum temperature was 27 degrees and the maximum will be around 29 degrees Celsius. Bengaluru is expected to have a partly cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The minimum temperature 22 degrees and the maximum will be around 31 degrees. Hyderabad is expected to have generally cloudy sky with one or two spells of rain or thunder showers. The temperature will hover between a minimum of 27 and a maximum of 37 degrees Celsius.
और अब समय हो चला है इतिहास के पन्नों में झांक करके देखने का और आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में बात करने का। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि आज है 17 मई और आज के दिन ही वर्ष 1769 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के कपड़ा उद्योग के लिए बुनकरों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे।
एंड इन द ईयर 1498 वास्को डी गामा, पोर्चुगीज नेविगेटर, अराइव्ड इन इंडिया एंड He sailed around the Cape of Good Hope in Calicut, Kerala with three vessels and was the first Westerner to sail to India from Europe. And in 1878, Hindi Daily Bharat Mitra was started from Calcutta.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का ही वो दिन था जब वर्ष 1975 में जापानी महिला ज़ुनको तैबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी थी।
In 1949, India decided with only one dissent vote to remain within the Commonwealth of Nations. And in 1957, Nehru, who went to Ceylon to celebrate the 2500th anniversary of the founding of Buddhism, called for an end to nuclear tests.
वर्ष 1987 में आज के दिन ही सुनील गावस्कर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी।
In 1976, four Indians successfully skied down from the slope of Trishul Peak, and in 1980, V.S. Kumar Anandan sets record for balancing on one foot for continuously 33 hours.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि वर्ष 2010 में आज का ही वो दिन था जब भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ बॉक्सिंग चैंपियनशिप के सभी 6 स्वर्ण पदक जीते थे और इसी दिन भारतीय सेना ने ओडिशा के वेलर्स द्वीप स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी आईटीआर से परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया था। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है।
Going back a little, in 1995, three northeastern states remove restricted area permits, RAP, the Foreigner Protected Areas Act required foreigners to obtain a protected area permit, PAP, to visit certain areas in India. This requirement is in addition to getting an Indian visa. And in the year 1996, four members, Sangye Sherpa, Hira Ram, Tashiram, Nadre Sherpa of the Indo-Tibetan Border Police Expedition, climbed Mount Everest from the Chinese side.
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज हम मना रहे हैं विश्व दूरसंचार दिवस। ये दिन प्रत्येक वर्ष 17 मई को मनाया जाता है। आधुनिक युग में फोन, मोबाइल और इंटरनेट लोगों की पहली आवश्यकता सा बन चुके हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है और आज ये इंसान के व्यक्तिगत जीवन से लेकर व्यावसायिक जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका है। जहां पर पहले कभी किसी से संपर्क साधने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, वहीं आज मोबाइल और इंटरनेट ने इसे बहुत ही आसान बना दिया है। बहुत ही कम समय में अपने मित्रों, परिवार और सगे संबंधियों से संपर्क किया जा सकता है। और आपको यह भी बता दें कि दूरसंचार की क्रांति, जिसकी बदौलत भारत जैसे कुछ विकासशील देशों की गिनती भी विश्व के ऐसे देशों में की जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था अब बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। और आपको बता दें कि विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की परंपरा 17 मई 1865 में शुरू हुई थी, लेकिन आधुनिक समय में इसे 1969 से मनाया जा रहा है।
एंड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी दे इन 2006 नवंबर द आईटीयू प्लेनिपोटेंशियरी कॉन्फ्रेंस इन अंताल्या टर्की डिसाइडेड टू सेलिब्रेट बोथ इवेंट्स ऑन 17th ऑफ मई एज वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे। टुडे इज ऑल्सो द वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। दिस डे इज डेजिग्नेटेड एंड इनिशिएटेड by the World Hypertension League, that is WHL, which is in itself an umbrella to organizations of 85 national hypertension societies and leagues. The day was initiated to increase the awareness of hypertension, and this was especially important because of the lack of appropriate knowledge among hypertensive patients. And the theme was simply awareness of high blood pressure. In the year 2006, the theme was Treat to Goal with a focus on keeping blood pressure under control. The recommended blood pressures are less than 140 by 90 for the general population, and for the hypertensive population without any complication and less than 130 by 80 for those with diabetes and chronic kidney disease. So let's be aware and let's keep it in check, of course, Nikhil.
बिल्कुल. और श्रोताओं, ये भी जानना महत्वपूर्ण है कि हाइपरटेंशन में चक्कर आना, धमनियों में रक्त का दबाव बढ़ जाना, सिरदर्द की शिकायत होना, ये आम समस्याएं लोगों में होने लगती हैं और ये सभी हाइपरटेंशन के ही लक्षण हैं. इसके अलावा बेचैनी, थकान, अनिद्रा और गुस्सा आना भी शुरू हो जाता है हाइपरटेंशन के कारण. व्यक्तिगत और शारीरिक तथा मानसिक रूप से भी काफी समस्याएं होती हैं. इसके जो प्रमुख कारण हैं उन पर भी नजर डालना बेहद जरूरी है. खासतौर पर बहुत देर रात में भोजन करना, स्मार्टफोन पर लंबे समय तक अपना वक्त बिताना, शारीरिक व्यायाम न करना, स्ट्रेस लेना, गलत खानपान और आधुनिक जीवन शैली भी इसका एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है.
एंड इन द ईयर 2007 WHD थीम वॉज हेल्थी डायट, हेल्थी ब्लड प्रेशर. Through such specific themes, the WHL intends to raise awareness not only of the hypertension, but also factors contributing to an increase in the incidence of hypertension and the ways to prevent it.
और श्रोताओं, समय हो चला है जानी मानी हस्तियों को याद करने का. तो आपको बता दें कि आज पुण्यतिथि है चित्तरथ पुवक्कट कृष्ण नायर की. वे जाने माने व्यवसायी थे और भारतीय सेना के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी और इसके बाद भारत में टेक्सटाइल इकाई की स्थापना की थी. वर्ष 1981 में उन्होंने होटल और रिसोर्ट ब्रांड की एक लग्जरी हॉस्पिटैलिटी चेन की शुरूआत की थी. और कृष्ण नायर